तारापरी नन्नू जिन को माली काका के पास ले गई, जहां नन्नू जिन ने माली काका को कुछ पढ़कर फूंका। माली काका उसके जादू के कारण वापस जवान आदमी बन गए और वे दोनों तारापरी को ढेर सारी दुआएं देते हुए अपनी नई दुनिया बसाने के लिए गायब हो गए। तारापरी वापस अमन और मान के पास पहुंची। वो सोच रही थी कि वो मान को कैसे संभालेगी। ये सोचकर उसने अमन की गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, क्योंकि अमन और मान उसे बगीचे में ही ढूंढ रहे थे। हॉर्न की आवाज़ सुनकर अमन और मान दौड़कर गाड़ी की ओर गए और तारापरी को देखकर हैरान रह गए। अमन तारापरी के पास जाकर उसे गाड़ी से उतारा और कहा, ये क्या बचपना है मिस तारा, आप ऐसे कैसे गायब हो सकती हैं? आप जानते भी हैं मैं कितना परेशान हो गया था, कोई ऐसा करता है क्या भला? हाँ, मैं भी परेशान हूँ, तारापरी बोली। फिर अचानक अमन खुद को रोक नहीं पाया और उसने तारापरी को अपने गले से लगा लिया। तारापरी ने अमन को गले लगा लिया। अमन को गले लगाकर तारापरी को काफ़ी राहत और सुरक्षा का एहसास हुआ, पर पता नहीं मान को क्या हो गया था। अमन और तारापरी को एक साथ देखकर वो चिढ़ने लगा और उनके पास जाकर कहा, अगर आप दोनों का मिलन हो गया है तो अब हम लोग घर चले, मॉम के कितने ही फ़ोन आ गए हैं। मान का इस तरह से कहना तारापरी को कुछ अजीब सा लगा और वो उसे घूर कर देखने लगी। तभी अमन और मान का ध्यान तारापरी के कपड़ों की ओर गया और मान ने कहा, ये क्या, तुमने तो वो लहंगा चोली पहना हुआ था ना, वो कहाँ गया और ये कपड़े कहाँ से आए? तब अमन को भी मान का इस तरह से पूछना थोड़ा अजीब लगा और उसने भी कहा, हाँ मिस तारा, आपने कपड़े कहाँ बदले? तब तारापरी ने कहा, अमन सर, आपके कहने के मुताबिक मैं बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी, लेकिन मुझे पानी में भीगने की वजह से बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने यहीं पड़ोस में जाकर एक धोबी का घर ढूंढा, जहां बहुत सारे सफ़ेद कपड़े सूखे हुए थे। तभी कांटी ने मुझे गीले कपड़ों में देखा और मेरी मदद की और मुझे ये कपड़े पहनने को दिए। तब अमन ने कहा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम आपको उन गीले कपड़ों से छुटकारा तो मिला। लेकिन मान कहने लगा, पर आपको इस तरह से कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत थी, वो कपड़े आप घर जाकर भी बदल सकती थीं, कितने सुंदर लग रहे थे वो कपड़े आप पर, और कोई कपड़े बदलते हुए आपको देख लेता तो। ये सुनकर तारापरी के साथ साथ अमन भी चौंक गया, लेकिन जब मान को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो उसने जल्दी ही अपनी बातों को कवर किया और कहा, मेरा मतलब था कि अगर आप अकेली होती और कोई आपको नुकसान पहुँचा देता तो आपको घर चलकर कपड़े बदल लेने चाहिए थे। तब अमन ने कहा, अच्छा आप छोड़ो ये बातें, हमें जल्दी ही घर पहुँचना होगा, मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। ये सुनकर वे दोनों भी गाड़ी में बैठ गए और जल्दी ही वे लोग अमन के बंगले की ओर रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी उन तीनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वो तारापरी के हाथ में जो पता था उस पर जाकर पता लगाएगी तारापरी की सच्चाई। करिश्मा जी का सोचना अपनी जगह सही था, क्योंकि करिश्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उनके बेटे के पीछे काली शक्तियाँ हाथ धोकर पड़ी हुई थीं, और वो ये भी जानती थी कि काली शक्तियाँ जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक कि वो तिलस्मी पत्थर नहीं हासिल कर लेती, इसलिए वो तारापरी को लेकर अपनी पूरी तसल्ली करना चाहती थी। और जल्दी ही वे तीनों वहाँ आ गए थे। करिश्मा जी ने उन तीनों को देखकर एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुराई और कहा, तारा बेटा कैसे हो, आप ठीक तो हो ना? और उन्होंने तारापरी को गले से लगा लिया था। मैं ठीक हूँ करिश्मा मैम, तारापरी ने कहा। तारापरी के मैम कहने पर करिश्मा जी ने उसे घूर कर देखा, फिर तारापरी जल्दी से बोली, मेरा मतलब है मॉम। तब करिश्मा जी मुस्कुराने लगी। तभी करिश्मा जी ने कहा, अच्छा आप तीनों एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हम लोगों को अभी निकलना होगा। ये आप क्या कह रही हैं मॉम, हमें कहाँ जाना है? मान ने पूछा। बेटा हम लोग एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, करिश्मा जी ने उत्तर दिया। लेकिन मॉम आज हमारी शादी है और आज के दिन आपको किस काम की याद आ गई है जिसके लिए हम सबको चलना होगा? मान थोड़ा नाराज़ होते हुए अपनी माँ से बोला। तब अमन मान को इस तरह से करिश्मा जी से बात करता देख गुस्सा हो गया और बोला, मान ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का, और अगर मॉम ने कहा है कि शादी से पहले हम सबको एक खास जगह जाना है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, और वो भी बिना सवाल किए। अमन की बात सुनकर मान अपना मन महसूस कर रह गया और तारापरी की ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं इसके खूबसूरत जिस्म को मैं कब प्यार कर पाऊंगा, पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। मान तारापरी को देखकर जो भी उसके मन में आता था वो सोचता जा रहा था, और अचानक तारापरी की नज़र मान पर पड़ी और वो मान को देखकर अजीब सा महसूस करने लगी। तारापरी मन ही मन सोचने लगी, आखिर ये क्या हो गया है मुझे, क्यों मान का व्यवहार मुझे इतना अजीब लग रहा है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से राधा की ज़िंदगी मेरे सामने आई है तब से मान का बर्ताव मेरे लेकर काफ़ी बदल सा गया है, उसका मुझे यूं घूरना छूना सब कुछ कितना अजीब सा है। तारापरी को इस तरह से सोच में गुम देखकर करिश्मा जी ने उसे कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो तुम? तब तारापरी ने नामे सर हिला दिया। फिर करिश्मा जी ने कहा, फिर हम लोग चलें, हमें बहुत दूर जाना है। ओके मॉम, जैसा आप कहें, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, अमन ने कहा। और जल्दी ही अमन और मान तारापरी के साथ गाड़ी में सवार होकर निकल चुके थे। करिश्मा जी अमन के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी और मान तारापरी के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया था। करिश्मा जी ने एक लोकेशन फ़ोन में ऐड करके अमन के सामने रख दिया था और जल्दी ही अमन की गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी थी। मान सारे रास्ते तारापरी को देख रहा था। तारापरी की नजर भी बार बार मान पर ही पड़ रही थी और फिर मान धीरे धीरे तारापरी को बाहर की कुछ चीज दिखाने के बहाने से उसके बेहद करीब जा बैठा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तारापरी को मान से घबराहट सी होने लगी थी। वहीं अमन गाड़ी के पीछे वाले मिरर के थ्रू मान को तारापरी के बेहद करीब बैठा हुआ देख चुका था और उसे तारा की शक्ल सूरत भी उस मिरर से साफ दिखाई दे रही थी। अमन मन ही मन सोच रहा था, ये मान को क्या हो गया है, ये तारा के इतने करीब क्यों जा रहा है, जबकि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यूं मान का उसके इतने करीब जाकर बैठना। तभी अमन ने कुछ सोचकर थोड़ी ही दूरी पर गाड़ी रोक दी थी। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी, करिश्मा जी ने पूछा। मान और तारापरी भी उसे देखने लगे थे। वो मॉम, आई डोंट नो, लेकिन मेरे सर में अचानक से बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अमन ने कहा। ओ बेटा, लगता है तुझे थकावट हो गई है, तो एक काम कर, तू थोड़ी देर पीछे सीट पर आराम कर, इतने में मान गाड़ी चलाएगा, करिश्मा जी ने कहा। अमन ने हाँ में सर हिला दिया और बिना मान की हाना का इंतजार किए वो गाड़ी से उतरकर पीछे जा बैठा था। मान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, सो उसे तो अब उतरकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठना ही पड़ता। सो भारी मन से मान तारापरी के पास से हटा और गाड़ी में आगे जाकर बैठ गया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। तारापरी ने मान के हटने पर राहत की सांस ली।
तारापरी मन ही मन सोचने लगी, ये क्या हो गया है मुझे, मान का यूं मेरे पास आना मुझे बहुत बुरा सा क्यों लग रहा था, आखिर चक्कर क्या है, जबकि मान से तो मेरी शादी होने वाली है, वो नेक दिल इंसान है, जिसके पास आने से ही मुझे वो मिलेगा जिसके लिए मैं यहाँ इस पृथ्वी पर अपने लोगों को छोड़कर आई हूँ, अगर यही हाल रहा तो मैं मान को कैसे अपने पास आने दूंगी। तभी अमन, जो तारापरी को देख रहा था कि वो कहीं गहरी सोच में गुम है, तब उसे सोच से बाहर निकालने के लिए अमन ने जानबूझकर हल्का सा तारापरी के कंधे को अपने कंधे से धक्का दिया और बोला, तुम्हारे होने वाले पति के सर में जोर से दर्द है और तुम हो कि पूछना तो दूर की बात मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। ये बात करिश्मा जी ने भी सुन ली थी और वो भी कहती हैं, हाँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है तारा बेटी, तुम अब मेरे बेटे की होने वाले पत्नी हो, तुम्हें इन दोनों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। अब एक काम करो, तब करिश्मा जी ने गाड़ी की डोर से एक शीशी तारा को दी और कहा, ये एक खास तरह का ऑयल है जो मैं हमेशा अपनी हर गाड़ियों में रखती हूँ, सो तारा बेटा तुम एक काम करो, इस ऑयल से अमन के सर पर हल्की सी मालिश कर दो, उसे आराम आ जाएगा। तारापरी का मन तो नहीं था, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी वो शीशी ली और अमन के सर पर हल्का सा मालिश करने लगी। तभी तारापरी ने नोटिस किया कि वो किसी की गहरी नजरों में है, क्योंकि कोई भी लड़की हो, चाहे सो रही हो या पीछे की ओर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई हो, अगर कोई उसे घूर रहा है तो उसे पता चल ही जाता है। ये एक कुदरती सिक्स सेंस होती है हर लड़की और हर एक औरत में। तारापरी को लगा कि कोई उसे घूर रहा है और अनायास ही तारापरी की नज़र मान पर चली गई थी, जो गाड़ी के मिरर के थ्रू उसे गहरी गहरी नज़रों से देख रहा था। अचानक मान से आँखें मिलने पर तारापरी ने अमन के सर से अपना हाथ हटा लिया और तभी अमन ने अपनी आँखें खोल ली।